بابا کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو مایوس دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو بڑے کرپالو تھے۔ منشیہ کے من کا اندھکار اور اہنکار وہ ستیہ کی روشنی سے ہی مٹایا کرتے تھے، اسی لیے تو سارا وشو آج بھی بابا کو یاد کرتا ہے اور بابا کا گنگان گاتے لوگوں سے کہتے ہیں کہ سائیں سائیں بولو منوا، سائیں سائیں بولو۔
पालक साईं ही उजियारा है, और कहीं हम क्यों भटके जब साईं ही हमारा है। साईं नाम लेने से मिटा है मन का जो अंधियारा है, मन का जो अंधियारा है। साईं साईं बोलो मनवा, साईं साईं बोलो, साईं साईं बोलो मनवा, साईं साईं बोलो। साईं नाम ही अमिट सत्य है और कहीं ना डोलो मनवा, साईं साईं बोलो मनवा, साईं साईं बोलो। साईं साईं बोलो मनवा, साईं साईं बोलो।
बाबा का एक भक्त था दासगणो। एक दिन बाबा के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा सफल हो और मैं आपसे दूर रहने का कष्ट भी सह सकूं। दासगणो की बात सुनकर बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद बड़े प्यार से बाबा बोले, जाओ जाओ, जरूर जाओ और कर आओ त्रिवेणी स्नान। प्रयागराज की यात्रा से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। बाबा की यह बात सुनकर दासगणु एकदम दंग रह गया। ये बात और कोई तो क्या, उनकी पत्नी भी नहीं जानती थी कि वो प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान करने के लिए सोच रहे हैं। बाबा कैसे जान गए? दासगणु ने बड़े गदगद भाव से बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसे लगा जैसे बाबा के चरणों में एक ही साथ बड़ी तेजी से गंगा, यमुना और सरस्वती प्रवाहित हो चली हो। कुछ क्षण के बाद दासगणों ने बाबा के चरणों से अपना मस्तक उठाया और कहा, आप अंतर्यामी हैं गुरुवर, आपके चरणों में ही मैंने त्रिवेणी स्नान कर लिया है, मेरे जीवन का कल्याण हो गया है और अब मुझे आपकी भक्ति और प्रेम के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, आपका नाम ही साचा है प्रभु, बाकी सब झूठी माया है। एक आदमी का 6 वर्ष का बेटा बहुत ही बीमार रहता था। बहुत इलाज किया फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से हकीम से इलाज करवाए। वो परेशान सी हालत में थे। तब किसी ने उसे शिरडी के संत साईं बाबा के बारे में बताया तो उसके दिल में तमन्ना जाग उठी कि बाबा के चरण पकड़कर आप बीती सुनाऊं। एक दिन उसने आंखें बंद करके मन ही मन में बाबा से प्रार्थना की, मेरे इकलौते बेटे को ठीक कर दो बाबा, मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, आप बड़े ही दयालु हैं, मैं आपके शरण में अपना दुख लेकर आया हूं, उसे दूर कर दीजिए बाबा। मेरा बच्चा ठीक हो जाने के बाद आपके दर्शन कराने उसे आपके चरणों में लेकर जरूर आऊंगा। कुछ दिनों बाद उसका बेटा ठीक हो गया, धीरे धीरे शक्ति भी आने लगी, लेकिन बाबा से किया हुआ वादा वो आदमी भूल गया था। एक रात उसने सपने में देखा, स्वयं शिरडी के साईं बाबा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, उसे अपने पास बुला रहे थे। सुबह आंख खुलने के बाद सारा दिन वही दृश्य उसके सामने घूमने लगा। वो समझ गया, भूले हुए वादे को याद दिलाने ही स्वयं बाबा आए थे। वो उसी समय अपने बेटे को साथ लिए शिरडी पहुंच गया। बाबा के चरणों में बच्चे को रखकर उसने अपने भूल की क्षमा मांगी। बाबा हमेशा यही कहते थे कि भक्त मेरे हैं, मैं भक्तों का हूं, भक्तों का दुख दर्द मैं स्वयं भोग लेता हूं। यदि वो सच्चे मन से पश्चाताप करें तो श्रद्धालुओं को संकट से मुक्ति दिलाऊंगा। भीतर के पर खोलो और तार से तार मिलाओ, तुम याद करोगे मैं तुरंत चला आऊंगा। शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हुए हैं, प्रकाश सारे अंधेरे को चीरता हुआ जग को रोशनी से प्रकाशित करता है। बस उसी प्रकार साईं का जीवन चरित्र भी अपने स्वयं प्रकाश से अद्वैत और द्वैत भाव पर रोशनी फैलाकर उसका भेद उजागर करता है। सुबह होते ही भगवान साईं की ज्योति धरती के सारे प्राणी मात्राओं के हृदय को अलौकिक कर देती है और दया धर्म की यह ज्योति चंद्र के जैसी उज्ज्वलता और शीतलता प्रदान करती है। अवतारी लोग सामान्य जनों का दुख दूर करते हैं, प्राणी मात्र पर दया करते हैं और जो सदा सत्य अहिंसा और धर्म का अख्तियार करते हैं, प्रत्येक जीव जिनकी दृष्टि में परमात्मा का अंश होता है वे ही संत वंदनीय और पूजनीय हैं। शिरडी के साईं ऐसे ही महान सिद्ध संत थे, ईश्वर के अंश थे। हालांकि बाबा ने कभी अपने मुंह से अपने बारे में कुछ नहीं कहा, वे हमेशा लोगों को दुआ देते समय यही कहते थे कि अल्लाह तेरा भला करेगा, राम तेरे साथ है, अल्लाह तेरा मालिक है। वे अपने आप को याद हक में जीने वाला साधारण सा व्यक्ति ही मानते थे, ईश्वर का बंदा मानते थे, सेवक मानते थे। अपने गुरु को साक्षी मानकर ही लोगों को दुआ देते थे। जब 16 साल की आयु में नीम के पेड़ तले लोगों ने उन्हें ध्यानमग्न अवस्था में पाया और ध्यान उतरने के बाद जब उन्होंने उस फकीर बालक को उसका परिचय पूछा तो उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, इस पेड़ के नीचे मेरे गुरु की समाधि है। जब कुतूहलवश गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई की तब देखा वास्तव में वहां एक समाधि थी और चारों ओर दीपक जल रहे थे, ताजे फूल समाधि पर चढ़ाए गए थे। उसे देखकर गांव वालों की श्रद्धा और बढ़ गई, गांव वालों ने उन्हें गुरुस्थान दे दिया। शांताबाई नाम की एक महिला जीवन के ऐसे दुख भरे भंवर में भटक रही थी जहां उसका सारा परिवार बड़ी मुश्किल से निर्वाह कर पाता था। शांताबाई इतनी बीमार रहती थी कि मुश्किल से बिस्तर से उठ पाती थी। उसे 3 बेटे और 4 बेटियां थी जो अभी तक काम करने लायक नहीं हुई थी। शांताबाई और उसके पति केशव मंगोदिया साईं में पूरी श्रद्धा रखते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी शांताबाई के घर पर आया और पीने के लिए पानी मांगा। शांताबाई ने बड़ी मुश्किल से उठकर उस बूढ़े आदमी को पानी दिया। पानी पीते पीते उसने पूरे घर का निरीक्षण किया और सहानुभूतिपूर्वक पूछा, क्या बहुत दुख है तुम्हें? शांताबाई ने अपने जीवन की पूरी कहानी उस वृद्ध को कह डाली। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए उस वृद्ध ने उस रात उनके घर में ही बिताई। बच्चे शांताबाई और केशव जी के साथ वृद्ध ने भोजन भी किया। सुबह उस वृद्ध ने कहा कि मैं शिरडी जाना चाहता हूं, मुझे गाड़ी में बिठा देने की व्यवस्था कीजिए। शांताबाई के पति और बच्चे उस वृद्ध को गाड़ी में बिठाने के लिए घर के बाहर आए। गाड़ी में सीट पर बैठते ही अचानक वो वृद्ध गायब हो गया। सब देखकर चकित हो गए। शांताबाई के पति केशव मंगोदिया को एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं था, स्वयं साईं बाबा ही आए थे। उस समय से शांताबाई की बीमारी चली गई और आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी होने लगी। केशव मंगोदिया साईं की झलक को देखकर कह उठे, साईं बाबा सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की गति को जानते हैं, भक्त कितने भी दूर रहें, फिर भी उनकी आवाज सुनकर बाबा उनका दुख दर्द दूर करने स्वयं दौड़े आते हैं। बंबई में सरकारी नौकरी करने वाले लाला लक्ष्मीचंद को सपने में एक महात्मा ने दर्शन दिए। लाला ने उन्हें जीवन में कभी नहीं देखा था। कुछ दिनों बाद लाला साई भक्त दास गणों का कीर्तन सुनने अपने मित्र के घर गए थे। पूजा की पोथी पर दास गणों ने साई बाबा का चित्र रखा हुआ था। चित्र को देखते ही लाला लक्ष्मीचंद चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने जिस महात्मा को सपने में देखा था वो यही थे, यानी कि साई बाबा। लाला का मन बाबा का दर्शन करने हेतु तड़पने लगा, पंचप्राण व्याकुल हो गए। किंतु शिरडी पहुंचने का किराया तक जेब में नहीं था। मित्र से 15 रुपए उधार लेकर एक अन्य मित्र के साथ लाला शिरडी की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों मित्र भजन करने में मगन थे। तब शिरडी से लौटे कुछ मुसलमान फकीरों से उनकी भेंट हो गई। लाला ने बाबा के बारे में उनसे पूछताछ की तो फकीरों ने बाबा की तारीफ करते हुए कहा,
अपने भक्तों की आस पूरी करते हैं, प्यार से मेरे साईं सबकी झोली भरते हैं। सांस जो भी आती है, सांस जो भी जाती है, सच का आईना सबको हर घड़ी दिखाती है। आज दिन बड़ा है तो रात कल बड़ी होगी, जिंदगी के सिरहाने मौत भी खड़ी होगी। जो तुझे उठाएंगे वो तुझे गिरा देंगे, इस जहां में सब तुझको सत्य की सजा देंगे। श्रद्धा और सबूरी को मन में जो जगह दोगे, मन में जो जगह दोगे, देख लेना मंजिल को खुद ब खुद ही पाओगे, खुद ब खुद ही पाओगे। आन बान से आन बान और शान से रहो, मानव का कल्याण करो, प्यार जहां में सबको बांटो, छोटे बड़ों का मान करो। गौ सागर से तरना है तो बाबा का गुणगान करो, गौ सागर से तरना है तो बाबा का गुणगान करो। बाबा का ध्यान धरो, साई गुणगान करो, बाबा का ध्यान धरो, साई गुणगान करो।
बाबा की यह तारीफ सुनकर लाला का मन भर आया। लाला ने बाबा को अर्पण करने हेतु कुछ अमसत खरीद लिए और शिरडी पहुंच गए। बाबा ने मीठी मुस्कान के साथ दोनों का स्वागत किया और बोले, आजकल के लोग बड़े चालाक होते हैं, भजन करते आते हैं और रास्ते में मिले फकीरों से इस बूढ़े के बारे में पूछते हैं। वारे अल्लाह के बंदो, दूसरों से क्या पूछते हो, या खुद तसल्ली कर लो। सपने में कौन सा फकीर दिखाई दिया था? रुपये उधार लेकर शिरडी में फकीर को मिलने आने की क्या जरूरत है? सब बातें सुनकर लाला का हृदय भर आया। उसने उनके चरण पकड़े और उनके चरणों पर माथा रख दिया। जिसने श्रद्धा भक्ति से उनका स्मरण किया हो, उनके भाव को जानते हुए बाबा उनकी कामना पूरी करते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। दिल्ली के एक भक्त निराशा में डूबे, जीवन से हारे, हालात से परेशान होकर भी शिरडी पहुंचे। अपने आप ही उनके कदम द्वारका माई की तरफ बढ़ने लगे। उस भक्त ने दिल्ली में साई लीला नामक एक किताब पढ़ी थी, जिसमें लिखा था, जो भी व्यक्ति विपता में घिरकर विवश और हताश हो जाए यदि वो साई लीला को द्वारका माई में धूनी के सामने 7 दिनों में पूरा कर लेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। उस भक्त ने मन लगाकर 3 दिनों में ही 7 दिनों का पाठ पूरा कर दिया और वापस दिल्ली लौट आया। घर में प्रवेश करते ही मां ने उसका स्वागत करते हुए कहा, बेटे बेटे, साई बाबा ने अपने भक्त की पुकार सुन ली, तुझे नौकरी लग गई। ये सुनकर वो भाव विभोर होकर कहने लगा, साई तुम्हारी जय हो, बाबा तुम्हारी जय हो। एक दिन 4 सहपाठी ब्रह्मज्ञान की खोज में एक भयानक जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में उन्हें एक वनवासी मिला। उसने विनित भाव से उनसे कहा, मार्गदर्शक के बिना आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मुझे साथ ले चलिए, मैं रास्ता दिखाऊंगा। चारों ने उस मनुष्य की अवहेलना की और वन में घुस गए। बहुत भटकने के बाद सब वहीं पहुंचे जहां उनको वो वनवासी मिला था। वो 4 सहपाठी भूख प्यास से निढाल हो गए थे, किंतु वो मनुष्य वहीं खड़ा था। शायद उसे पता था चारों लौटकर इसी जगह आएंगे। उसने फिर कहा, आप थके हारे हैं, मेरी कुटिया में विश्राम करके अन्न जल ग्रहण कीजिए। उसमें से 3 ने उस मनुष्य को अछूत समझकर उसका अनादर किया, किंतु एक ने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, और वो वनवासी के पीछे चलने लगा। कुटिया में आने के बाद अन्न जल ग्रहण करते ही उस चौथे आदमी की विचारधारा ही बदल गई, उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन वो वनवासी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके सामने गुरुदेव खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसने गुरुदेव की चरण धूलि मस्तक पर लगाई। फिर गुरुदेव ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं। समर्पित भाव से वो गुरु के साथ चल पड़ा। उस दुर्गम जंगल में एक कुआं था। गुरु ने शिष्य के पैर कसकर बांध दिए और कुएं में उल्टा लटका दिया। कुछ घंटों बाद गुरु ने उसे पूछा, कैसे हो शिष्य? तो शिष्य ने कहा, मैं अपरिमित सुख का अनुभव कर रहा हूं। गुरुदेव बोले, तुम परीक्षा में सफल सिद्ध हुए, अब तुम ब्रह्मज्ञान के अधिकारी हो। इस तरह गुरु कृपा से शिष्य ब्रह्मानंद में लीन होना सीख गया। रामचंद्र पाटिल बीमार पड़ गया। उसके धड़कनों की गति धीमी होने लगी तो उसे यमदूत नजर आने लगे। फिर भी वो मन ही मन बाबा को याद करता रहा। बाबा उसके पास पहुंच गए और बोले, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर का यमदूत का संकट टल गया है। किंतु तात्या पाटिल की मुझे बड़ी चिंता हो रही है, विजयादशमी आते ही यमराज उसे लेने आने वाले हैं। तुम तो जानते ही हो तात्या ने मेरी कितनी सेवा की है, उसकी सेवा का पुण्य तो मुझे चुकाना ही होगा। ये कहकर बाबा विचारमग्न हो गए। विजयादशमी का दिन समीप आते ही तात्या पाटिल की दशा बिगड़ने लगी। तात्या की नब्ज धीमे धीमे चल रही थी, हृदय का स्पंदन भी धीमा होता चला गया। उसके जीवन की अंतिम घड़ी करीब आ गई थी। लोग उसके मुंह में गंगाजल डालने लगे। ठीक उसी समय एक अजब घटना घटी। तात्या पाटिल के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसकी खोई हुई नब्ज जगह पर आ गई। ठीक उसी समय अपने भक्तों को संकट से बचाने वाले साईं बाबा खुद बीमार पड़ गए। नश्वर देह छोड़ने से कुछ समय पूर्व बाबा की इच्छा अनुसार बाबा को बापू साहेब बूटी की हवेली, जिसे आज समाधि मंदिर कहते हैं, लाया गया। समाधि काल निकट आया जानकर बाबा ने भक्तों से कहा, मैं ये नश्वर शरीर छोड़ने जा रहा हूं। इस नश्वर शरीर के लिए आप दुख न करें। मेरी आत्मा यहां सदा विराजमान रहेगी। जो भी मुझे मन से याद करेगा मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा, ये मेरा वचन है। इतना कहकर बाबा अपने प्राण त्याग कर महासमाधि में लीन हो गए। आज हम बाबा की जीवित मूर्ति तो नहीं देख सकते, मगर जब भी शिरडी जाते हैं तो एक सुंदर छवि मस्जिद में रखी हुई नजर आती है। भक्त हृदयी कल्पनाशील यात्रियों को आज भी उस छवि का दर्शन करके जैसे साक्षात साईं बाबा के दर्शन किए हो ऐसा आनंद और संतोष प्राप्त होता है। अब तो बाबा देहधारी नहीं है, फिर भी वे कण कण में और अणु रेणु में बसे हैं। बाबा जब देहधारी थे तब जिस तरह से भक्तों का कल्याण करते थे, प्रायः उसी तरह आज भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। साईं बाबा जैसे संत की तो मृत्यु ही नहीं होती, वास्तव में वे मानव जैसे दिखाई देते थे, मगर वे खुद ही ईश्वर थे। आइए हम सब इस ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे साईं सदगुरु, हे भक्तों के कल्पतरु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण का कभी विस्मरण न हो, ऐसी बुद्धि हमको देना। इस संसार के जन्म मरण के फेरे से हम थक गए हैं, हमें इससे मुक्त करिए। हमारी इंद्रियां संयमी बने और हमारी वृत्ति अंतर्मुख की तरफ बढ़े और हम आत्मदर्शन पाएं। माता पिता पुत्र भाई बहन पति पत्नी आदि किसी भी काम के नहीं, केवल आप ही हमारे आनंद प्रत मुक्तिदाता हो। हमारी विपत विदारी दुष्ट वृत्ति को नष्ट करना, सब कुछ भूलकर हम सदा आप ही का ही नाम स्मरण करें। हमारी चंचलता दूर करके हमारा हाथ थाम लेना और अहंकार तथा अज्ञान को नष्ट करना। जय ओम साई, ओम साई, ओम साई। साई भक्तों, आज हमने साई कथा का अमृतपान किया। इसी तरह जो भी साई कथा को सुनेगा और सुनाएगा उस पर साई बाबा का सदैव वरद हस्त होगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो भक्तों, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।